नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइना ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जस्टिन ग्रिमर, मार्गरेट ई रॉबर्ट्स और ब्रैंडम एम स्टुअर्ट की पुस्तक टेक्स्ट एज डेटा सामाजिक विज्ञान में पाठ्य सामग्री के अध्ययन के लिए मशीन लर्निंग और ठोस शोध डिजाइन को साथ लाने वाली विश्लेषणात्मक मार्गदर्शिका है। इसका विषय केवल बड़े दस्तावेज संग्रहों से शब्द, विषय या वर्ग निकालना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि पाठ से सामाजिक दुनिया के बारे में विश्वसनीय ज्ञान कैसे बनाया जाए। लेखक सोशल मीडिया पोस्ट, समाचार, सरकारी दस्तावेज, संदेशों और अभिलेखों जैसे स्रोतों को मानव व्यवहार, विचारों और संस्थाओं के प्रमाण के रूप में देखते हैं। पुस्तक का केंद्रीय ढांचा 5 शोध कार्यों पर टिका है, प्रतिनिधित्व, खोज, मापन, पूर्वानुमान और कारणात्मक निष्कर्ष। इसका उद्देश्य एल्गोरिदम को शोधकर्ता का विकल्प बताना नहीं, बल्कि सिद्धांत, मानवीय निर्णय और सांख्यिकीय सत्यापन को अधिक सक्षम बनाना है। इसलिए यह पुस्तक तकनीकी विधियों की सूची से अधिक सही प्रश्न, उपयुक्त डेटा और वैध निष्कर्ष के बीच संबंध समझाने वाली पुस्तक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले एल्गोरिदम नहीं, सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों से शुरू होने वाला ढांचा। पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह टेक्स्ट विश्लेषण को मशीन लर्निंग के प्रचलित तकनीकी वर्गीकरणों से नहीं, सामाजिक विज्ञान के वास्तविक प्रश्नों से व्यवस्थित करती है। सामान्यतः कोई विधि पर्यवेक्षित है या अपर्यवेक्षित, इसे आरंभिक निर्णय माना जाता है। ग्रिमर, रॉबर्ट्स और स्टुअर्ट के लिए पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि शोधकर्ता जानना क्या चाहता है। क्या दस्तावेजों को उपयोगी रूप में प्रस्तुत करना है, अनदेखे पैटर्न खोजने हैं, किसी अवधारणा को मापना है, भविष्यवाणी करनी है या किसी हस्तक्षेप का प्रभाव समझना है। इसके बाद ही विधि का चुनाव अर्थपूर्ण होता है। यह बदलाव इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक ही एल्गोरिदम अलग शोध उद्देश्यों में अलग भूमिका निभा सकता है, और तकनीकी रूप से प्रभावशाली मॉडल भी गलत प्रश्न के लिए अनुपयोगी हो सकता है। लेखक डेटा की प्रचुरता को स्वतः प्रमाण नहीं मानते। अधिक दस्तावेज, अधिक कंप्यूटिंग शक्ति या अधिक जटिल मॉडल किसी अस्पष्ट अवधारणा को अपने आप स्पष्ट नहीं करते। शोधकर्ता को यह बताना पड़ता है कि पाठ किस सामाजिक प्रक्रिया का संकेतक है, चयनित दस्तावेज किस जनसमूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और निष्कर्ष की सीमा कहाँ तक है। इस प्रकार पुस्तक मशीन लर्निंग को सामाजिक वैज्ञानिक तर्क के अधीन रखती है, न कि उसके स्थान पर। दूसरा, 5 कार्यों में पाठ्य शोध की पूरी श्रृंखला, प्रतिनिधित्व से कारणात्मक निष्कर्ष तक। पुस्तक का संगठन 5 परस्पर जुड़े कार्यों के माध्यम से होता है। प्रतिनिधित्व का अर्थ है कच्चे पाठ को ऐसी संरचना में बदलना जिस पर व्यवस्थित विश्लेषण संभव हो, जैसे शब्दों, विशेषताओं या अधिक संक्षिप्त सांख्यिकीय रूपों के आधार पर दस्तावेजों का वर्णन। खोज का उद्देश्य बिना पहले से पूरी तरह तय श्रेणियों के नए पैटर्न, समूह या विचारों की पहचान करना है। यह चरण सिद्धांत निर्माण के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन खोजे गए पैटर्न को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं है। मापन में शोधकर्ता किसी सामाजिक अवधारणा जैसे नीति, स्थिति, भाव या विषय की उपस्थिति को पाठ से मापने का प्रयास करता है। यहां मानवीय व्याख्या, लेबलिंग और वैधता की जांच केंद्रीय हो जाती है। पूर्वानुमान का लक्ष्य उपलब्ध पाठ के आधार पर अज्ञात परिणामों या वर्गों का अनुमान लगाना है, जहां नए डेटा पर प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। अंततः कारणात्मक निष्कर्ष सबसे अधिक सावधानी मांगता है। पाठ में अंतर दिखना यह सिद्ध नहीं करता कि किसी उपचार या घटना ने वह अंतर उत्पन्न किया। इस कार्य के लिए तुलना, संभावित मिश्रित कारणों और शोध डिजाइन पर विशेष ध्यान चाहिए। यह 5 कार्य ढांचा पाठ विश्लेषण को अलग अलग तकनीकों का संग्रह नहीं रहने देता, बल्कि प्रश्न से निष्कर्ष तक एक अनुशासित प्रक्रिया बनाता है। तीसरा, प्रतिनिधित्व और मापन में मानवीय व्याख्या की अनिवार्य भूमिका। टेक्स्ट एज डेटा यह स्पष्ट करती है कि पाठ सीधे साधे संख्यात्मक तथ्य नहीं होते। किसी दस्तावेज में शब्दों की आवृत्ति, किसी विषय का अनुमान या किसी वर्गीकरण मॉडल का परिणाम उस अवधारणा के समान नहीं है जिसे शोधकर्ता मापना चाहता है। प्रतिनिधित्व के हर तरीके में निर्णय निहित होते हैं। किन शब्दों को रखा जाए, पाठ को किस इकाई में बांटा जाए, संदर्भ को कितना महत्व दिया जाए और किस संकेत को किसी सामाजिक अर्थ का प्रमाण माना जाए। इसलिए लेखक व्याख्यात्मक विशेषज्ञता को केवल प्रारंभिक सफाई का काम नहीं, पूरी शोध प्रक्रिया का भाग मानते हैं। उदाहरण के लिए, किसी राजनीतिक वक्तव्य में बार बार आने वाले शब्द किसी नीति समर्थन का संकेत दे सकते हैं, लेकिन वे विरोध, व्यंग्य, उद्धरण या प्रशासनिक भाषा का हिस्सा भी हो सकते हैं। मॉडल इस अंतर को तभी सीख सकता है जब अवधारणा, प्रशिक्षण, उदाहरण और सत्यापन उचित हों। पुस्तक इसी वजह से मापन को विशेष रूप से कठिन कार्य मानती है। अच्छा माप केवल संगणकीय रूप से दोहराया जा सकने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि उस सैद्धांतिक अवधारणा से जुड़ा भी होना चाहिए जिसके बारे में दावा किया जा रहा है। मानवीय पठन और मशीन की व्यापक प्रसंस्करण क्षमता का संयोजन यह अधिक विश्वसनीय रास्ता बनता है। यह दृष्टि गुणात्मक और मात्रात्मक शोध को विरोधी नहीं पूरक मानती है। चौथा, खोज और पूर्वानुमान के लाभ तथा सत्यापन की अलग कसौटियां। पुस्तक खोज और पूर्वानुमान को उपयोगी लेकिन अलग उद्देश्यों वाले कार्यों के रूप में रखती है। खोज में शोधकर्ता बड़े पाठ संग्रहों में ऐसी संरचनाएं या भेद तलाशता है जिनकी पूरी सूची पहले से ज्ञात नहीं होती। यह विशेष रूप से तब मूल्यवान है जब डेटा इतना विशाल हो कि केवल हाथ से पढ़कर महत्वपूर्ण पैटर्न पकड़ना कठिन हो। फिर भी किसी मॉडल द्वारा बनाए गए समूह या विषय अपने आप सामाजिक श्रेणियां नहीं बन जाते। शोधकर्ता को उदाहरणों को पढ़ना, परिणामों की व्याख्या करना और यह परखना पड़ता है कि उभरा पैटर्न प्रश्न के लिए सार्थक है या नहीं। पूर्वानुमान में कसौटी भिन्न है। यदि लक्ष्य किसी दस्तावेज को वर्गीकृत करना या किसी परिणाम का अनुमान लगाना है तो मॉडल को ऐसे डेटा पर भी अच्छा काम करना चाहिए जिसे उसने पहले नहीं देखा। यहां सटीकता उपयोगी है लेकिन सटीक पूर्वानुमान और वैध सामाजिक व्याख्या एक ही बात नहीं है। कोई मॉडल चुनावी परिणाम या दस्तावेज की श्रेणी ठीक बता सकता है फिर भी वह यह न समझा पाए कि सामाजिक प्रक्रिया वास्तव में कैसे काम कर रही है। पुस्तक इस अंतर पर जोर देकर शोधकर्ताओं को गलत सत्यापन से बचाती है। खोजे गए विचार के लिए व्याख्यात्मक और वैचारिक जांच चाहिए जबकि पूर्वानुमान के लिए नए मामलों पर प्रदर्शन की जांच आवश्यक है। एक की सफलता दूसरे का प्रमाण नहीं है। अंत में कारणात्मक दावों, डेटा वैधता और अनुसंधान नैतिकता की सीमाएं। पाठ्य डेटा पर काम करते समय सबसे बड़ा जोखिम यह मान लेना है कि विशाल संग्रह और उन्नत मशीन लर्निंग कारण और प्रभाव का उत्तर दे देंगे। पुस्तक इस धारणा का प्रतिरोध करती है। यदि किसी घटना के बाद ऑनलाइन भाषा बदलती दिखे तो यह परिवर्तन उस घटना से हुआ। ऐसा निष्कर्ष तभी उचित है जब शोध डिजाइन वैकल्पिक कारणों को गंभीरता से संबोधित करे। समय के साथ बदलती जनसंख्या, मंच के नियम, नमूने का चयन, समानांतर घटनाएं और मापन की त्रुटि सभी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। पाठ को उपचार, परिणाम या मध्यवर्ती संकेतक की तरह इस्तेमाल करने पर ये प्रश्न और जटिल हो जाते हैं क्योंकि पाठ का माप स्वयं मॉडल और मानवीय निर्णयों से निर्मित होता है। लेखक इसलिए कारणात्मक निष्कर्ष को केवल मॉडलिंग की समस्या नहीं पहचान और तुलना की समस्या मानते हैं। साथ ही पुस्तक डेटा की वैधता पर ध्यान दिलाती है। उपलब्ध डिजिटल पाठ अक्सर पूरे समाज का प्रतिनिधि नहीं होता। किसने लिखा, क्या संरक्षित हुआ, किस भाषा में सामग्री है और कौन अनुपस्थित है, ये प्रश्न निष्कर्ष की सीमा तय करते हैं। नैतिकता भी इसी ढांचे का हिस्सा है। विशेषकर निजी या संवेदनशील संचार, समूहों की संभावित हानि और स्वचालित वर्गीकरण के प्रभाव के संदर्भ में पुस्तक का अनुशासन यही है कि तकनीकी सुविधा को प्रमाण की गुणवत्ता समझने की भूल ना की जाए। निष्कर्ष में टेक्स्ट एज डेटा उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो बड़े पाठ संग्रहों से सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या संस्थागत प्रश्नों पर गंभीर शोध करना चाहते हैं। इसमें राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, संचार, लोकनीति, डिजिटल मानविकी और उद्योग अनुसंधान के विद्यार्थी, शोधकर्ता तथा विश्लेषक शामिल हैं। पाठक को सामाजिक विज्ञान की बुनियादी शब्दावली और अनुभवजन्य शोध की कुछ समझ होने पर इससे अधिक लाभ मिलेगा क्योंकि पुस्तक का मुख्य आग्रह मॉडल चलाने से पहले दावे की प्रकृति समझना है। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक विधि चुनने, डेटा की सीमाएं पहचानने, मापन को सत्यापित करने और पूर्वानुमान तथा कारणात्मक व्याख्या के अंतर को स्पष्ट रखने में अधिक सक्षम होता है। बौद्धिक रूप से यह पुस्तक मशीन लर्निंग को तटस्थ स्वचालन की तरह देखने के बजाय निर्णयों और मान्यताओं से भरी शोध प्रक्रिया के रूप में समझाती है। समान विषय की कई पुस्तकों में एल्गोरिदम, कोड या विशिष्ट सॉफ्टवेयर केंद्रित अभ्यास प्रमुख होते हैं। यह पुस्तक उनसे अलग इसलिए है क्योंकि इसका संगठन सामाजिक वैज्ञानिक कार्यों के अनुसार है, न कि केवल तकनीकी विधियों के अनुसार। यह गुणात्मक पठन और मात्रात्मक विश्लेषण के बीच कृत्रिम विभाजन को भी कम करती है, हालांकि नवीनतम ट्रांसफॉर्मर और बड़े भाषा मॉडल पर इसका कवरेज सीमित है। इसकी मूल शक्ति अब भी शोध डिजाइन, वैधता और जिम्मेदार निष्कर्ष के स्थायी प्रश्नों में है। इसलिए यह किसी एक उपकरण की पुस्तिका नहीं, पाठ को प्रमाण में बदलने के विवेक की आधारभूत पुस्तक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जस्टिन ग्रिमर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।